जहाँ तक हम बात कर रहे हैं एनर्जी की, तो एनर्जी हम देखते हैं कि आपका डे टू डे लाइफ में हम लोग रोज इसमें यूज करते हैं एनर्जी, ऊर्जा. ज्यादातर हम एनर्जी ही यूज करते हैं,
जी
ऊर्जा का यूज नहीं होता, क्योंकि आजकल हम लोग बाइलिंगुअल में आ गए हैं,
हाँ
तो कुछ वर्ड्स हमारे इंग्लिश के ही कॉमन हो गए हैं. तो हम लोग बात करते हैं एनर्जी की. एनर्जी में जहाँ तक बात है, इट्स ए डिफाइंड एज ए एबिलिटी टू टू द डू द वर्क, कि आप किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी काम को करने के लिए जो हमें एबिलिटी चाहिए होती है, जो क्षमता हमें चाहिए होती है, वो क्षमता इज नोन एज ए, दैट इज नोन एज एनर्जी, वही ऊर्जा है. क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो एनर्जी चाहिए, कुछ ऊर्जा चाहिए. अब यहाँ पे ये आ जाता है कि किस तरह से आप ये हम लोग जब सिर्फ बात कर रहे हैं, तो सिर्फ अपने बॉडी बॉडी की बात नहीं कर रहे हैं, अपने शरीर की बात नहीं कर रहे हैं. हम अगर अपने आसपास के वातावरण में देखते हैं, माहौल में देखते हैं, तो अगर शरीर की बात छोड़ दें एक तरफ से, तो बाकी चीज़ें जो हैं, जैसे मशीन्स हैं, हमारी कार है, हमारा कंप्यूटर है, ये हर एक चीज़, जैसे कि आज हम बात ही कर रहे हैं, तो हमें बातचीत करने में भी ऊर्जा लग रही है. वो ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है? ये बातचीत करना एक तरह से कार्य हो गया,
जी
और उस कार्य को करने की क्षमता जो है वो आपकी ऊर्जा हो गई, कि वहाँ से आपका ऊर्जा है. तो एनर्जी को अगर हम पर्टिकुलरली वर्ड टू वर्ड डिफाइन करते हैं, तो इट्स ए एनर्जी इज ए डिफाइंड एज द एबिलिटी टू डू वर्क. अब हम लोग बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, जैसे हम लोग ये कर लें कि हम चलते हैं, चलने के लिए एनर्जी चाहिए, खाना खाने के लिए एनर्जी चाहिए. आपको मैं बात कर रही हूँ कि जैसे आपका कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना है, अगर आप पैदल जाना चाहते हैं, तो आपको पैदल चलने के लिए ऊर्जा चाहिए. अगर आप किसी व्हीकल के साथ जाना चाहते हैं, किसी वाहन के द्वारा जाना चाहते हैं, तो उस वाहन में ऊर्जा चाहिए. वो ऊर्जा आपकी किसी भी तरह से हो सकती है, क्योंकि अभी हम लोग बात करेंगे हमारे पास अलग अलग किस तरह के स्रोत हैं ऊर्जा के. मगर अभी आपको फिर उस वाहन के लिए आपको कौन सी ऊर्जा चाहिए, वो हम लोग देखेंगे. जैसे कि पेट्रोल, डीजल हो गया आपका,
सीएनजी हो
सी
गया।
एन जी हो गया, तो इस तरह के जो चीज़ें हैं, उनके द्वारा वो एनर्जी जो है उसे मिल रही है वाहन को, वो उस एनर्जी के द्वारा अपने कार्यों को पूर्ण करेगा, उस अपने कार्य की क्षमता को पूरा करेगा, और वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे हमारा जो जाने का मेन मकसद है, उस मकसद को पूरा करेगा. तो यहाँ पे जो हमारे कार्य करने की क्षमता है, वो आपकी ऊर्जा आती है. हम अपने आसपास के किसी भी तरह से चीज़ों को देख लें आप, तो आप देखिए आपका फ़ोन है, आप वहाँ से एग्जांपल दे लीजिए, वहाँ पे जो बैटरी है, अगर आप बैटरी रिमूव कर देंगे, तो आपका फ़ोन डिवाइस क्या हो गया? एक
बेकार हो
बेकार
गया।
हो गया, क्योंकि वो खाली हो गया, उसमें अब
हाँ
कोई एनर्जी नहीं रही. समटाइम्स आप लोग भी फील करते हैं, हम लोग ऐसे बात बात में करते हैं, अरे मुझ में तो आज एनर्जी नहीं
एनर्जी
है.
नहीं है।
क्यों नहीं है भाई? क्योंकि वो आज आप किसी कारण से थक गए हैं, या आप फिजिकली किसी तरह से वेल नहीं है, ठीक नहीं है, तो उस वजह से कोई भी कारण हो सकता है कि आपका जो कार्य करने की क्षमता है वो आपकी गिर गई है किसी ना किसी वजह से. कोई भी कारण उसका हो सकता है, बीमारी हो सकती है, आपका फैटीक हो सकता है, थकावट हो सकती है, मगर उसकी वजह से आपका आप ये फील करते हैं कि आपकी एनर्जी डाउन हो गई. सिमिलरली जब हम मोबाइल की बात कर रहे हैं, उसकी जो एनर्जी है, जो उसका काम करने का जो स्रोत है, वो बैटरी है. हमने जैसे ही उसे बाहर निकाला, वो आपका वहां पे खत्म हो गया, और जहां एनर्जी नहीं है वहां काम नहीं हो
नहीं हो
सकता.
सकता।
ये हम लोग कहीं भी सोच के देखें, अगर एक मिनट के लिए भी सोच लें कि देयर इज नो एनर्जी इन द वर्ल्ड, कि प्लैनेट पे कहीं भी कोई एनर्जी नहीं है, तो आप क्या इमेजिन करेंगे? देयर इज नो वर्क, कोई कार्य नहीं होगा, क्योंकि हमारे हर एक कार्य करने के लिए कहीं ना कहीं, कहीं सी ना किसी तरह से ऊर्जा जो वहाँ पे मौजूद है. हाँ, जहाँ तक अभी हम लोग डेफिनेशन में जैसे समझ रहे थे,
जी
जैसा हमने परिभाषित किया है कि एनर्जी ऊर्जा जो है वो कार्य करने की क्षमता को बढ़ाता है, या कार्य करने की क्षमता देता है,
जी
तो आप जहाँ यहाँ के महत्व की बात आ गई, तो उसी डेफिनेशन को हम लोग आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं कि अगर हमारे पास ऊर्जा नहीं होगी, तो हमारे कार्य वो किसी भी ना किसी तरह से रुक जाएंगे. मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी कि अगर हम इमेजिन करते हैं कि पूरे प्लैनेट में किसी तरह की भी कोई ऊर्जा नहीं है, चाहे वो मशीनी है चाहे वो मानवीय है, तो नहीं है, तो उस केस में सब आपका खत्म हो जाएगा. जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं लूँ, अगर हम अपने शरीर की बात करते हैं पहले, बाद में हम नॉन लिविंग सी बात करेंगे, शरीर की बात कर रहे हैं, तो बींग ए लिविंग बींग, हमें क्या चाहिए? हमें हम रोज खाना खाते हैं, रोज ऑक्सीजन ले रहे हैं, रोज पानी ले पीते हैं, ये हमारी नेसेसिटीज हैं, आपका हवा पानी और भोजन, ठीक है, आप कपड़ों के बिना कहीं रह सकते हैं, आप अपने मकान के बिना कहीं रह सकते हैं, 1% के लिए वो चीजें अगर हमारे पास, हम उन्हें सुविधाओं में मानते हैं, हाँ सुविधाओं में मानते हैं, सेकेंडरी हैं, मगर ये प्राइमरी हैं। आप अगर ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन हम कुछ सेकेंड्स के लिए रोक पा देंगे, कुछ सेकेंड्स के लिए, आफ्टर दैट वी विल गेट सफोकेटेड, हमें घुटन होने लगेगी अगर हमें ऑक्सीजन नहीं मिलती है। तो वो जो ऑक्सीजन हम लोग इनहेल कर रहे हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सहेल कर रहे हैं, वो दोनों ही एक तरह से, ऑक्सीजन हमें ऊर्जा का स्रोत बन रही है, कार्बन डाइऑक्साइड जो हम एक्सहेल करेंगे वो प्लांट्स जो है, पौधों के लिए जो एक तरह से ऊर्जा का स्रोत बनेगी। तो जो इम्पोर्टेंस है ये कि हमें अपने आप को चलाने के लिए, अपने जो शरीर में हमें जो हमारी वर्किंग है, जो हमारे शरीर का कार्य करना है, वो उसके लिए जो ऊर्जा है वो हमें ऑक्सीजन से मिल रही है। अगर हमारी ऑक्सीजन की पूर्ति होती है तो उसके बाद हमारे पास पानी है, पानी के बाद हमारे पास भोजन है। भोजन के लिए आप देखिएगा कि कई लोग कई तरह के भोजन करते हैं और कई हर एक तरह के अलग अलग लोग हैं और अलग अलग तरह से ही उनका स्वास्थ्य है। क्यों? क्योंकि जो हम बात कर रहे हैं ऊर्जा के महत्व का, अगर हमें सही ऊर्जा मिलेगी तो हम सही कार्य करेंगे, और अगर हमें सही ऊर्जा नहीं मिलेगी तो ऑटोमेटिकली हमारा कार्य भी कहीं ना कहीं वहाँ पे डिस्टर्ब हो जाएगा, वहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएंगी। तो जहाँ पे जो ऊर्जा हमारे शरीर को मिलनी चाहिए, वो ऊर्जा जब सही तरीके से नहीं मिलती है भोजन पानी या हवा के रूप में, वहाँ पे आपकी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं, वहीं पे आपके कार्य करने की क्षमता धीरे 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 कम हो जाती है। अगर हम आप इमेजिन करें, कहीं हम लोग अपने दिमाग में सोचें भी कि अगर मैं एक हफ्ता खाना ना खाऊं तो क्या होगा, हमारा शरीर कमजोर हो जाएगा। तो हमारे चलने की क्षमता, हमारे बात करने की क्षमता, हमारे कार्य करने की क्षमता, वो की सारी डिस्टर्ब हो जाएंगी, सब पे इफेक्ट पड़ेगा। अब यहाँ पे ये तो महत्व हो गया हमारा प्राइमरी चीजों का, इवन की सेकेंडरी, अभी आप देख रहे होंगे कि मौसम बदल रहा है, पहले हमारे पास सर्दी गर्मियाँ थी, गर्मियों में आप अलग तरह का खान पान था आपका, अलग तरह का पहनावा था, अभी सर्दियाँ आएंगी तो धीरे धीरे हम लोग अपने जो क्लोथ्स हैं वो चेंज हो जाते हैं, हमारे वूलन क्लोथ्स आ जाते हैं। तो वूलन क्लोथ्स को शिफ्टिंग करने का जो मेन मोटिव है, जो एक रीज़न है उसके पीछे, दैट इज़ अगेन कि उनसे हमें हीट मिलेगी, और हीट इज ए काइंड ऑफ एनर्जी, वो आपका फिर से हमें जो गर्मी हमें मिलेगी उनसे, वो भी एक ऊर्जा का स्रोत है, ताकि हमारा शरीर गर्म रहे, हमारा शरीर एक टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे रहना चाहिए उस टेम्परेचर पर रहे। तो यही आपके जो एनर्जी का सबसे ज्यादा महत्व यही है कि वो हमें कार्य, हमारे जो कार्य करने की क्षमता है उसको बनाए रखता है। ये हमने अपने शरीर की बात करी है। इसी तरह से अगर हम नॉन लिविंग की बात करते हैं तो आप देख लीजिए नॉन लिविंग्स में मशीन्स है, मान लो हमारा ये स्पीकर है, ये स्पीकर हमारा या तो इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा होगा या किसी आपके बैटरी से चल रहा होगा। अगर ये स्पीकर चलना बंद हो जाए तो इस वक्त क्या होगा, मेरी जो आवाज़ है जो श्रोताओं तक पहुंच रही है वो पहुंचना बंद हो जाएगी, ठीक है। तो यही आपका ऊर्जा का कार्य करने की क्षमता खत्म हो गई, किस वजह से, एनर्जी नहीं होने की वजह से। तो एनर्जी का होना इसलिए जरूरी है क्योंकि वहां पे कार्य होते रहने चाहिए, कार्य कंटिन्यू होते रहे, हमारे जीवन में जो भी इंपॉर्टेंट हमारे अपने कार्य हैं वो चले रहे रेगुलर अपनी इसमें, तो उस वजह से हमारे को जरूरत पड़ती है एनर्जी के अपने जीवन में। देयर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, अलग अलग आपके टाइप्स हैं। पहले हम लोग ये कि कहाँ से मिलती हैं, उसके स्रोत क्या हैं, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अलग अलग एनर्जी के आपकी टाइप्स हैं, फॉर्म्स अलग अलग तरह से हैं। जैसे कि मान लो अभी आपको, अगर अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अभी हमारा मौसम चेंज हो रहा है, और अगर आप घर से बाहर से किसी, अभी इतना चिल्ड नहीं हुआ है मगर एक टाइम आता है जब आपने देखा होगा दिसंबर में बहुत ठंड हो जाती है, उस केस में हम लोग क्या करते हैं, अपने हाथ रब करते हैं और हमें एकदम से अपनी एनर्जी सी फील होती है, गर्मी सी फील होने लगती है एकदम से हाथ रब करने से। ऐसे ही हम लोग किसी आग के पास, कहीं हीटर के पास बैठ जाते हैं तो हमें वहां से भी हीट होने लगती है। और जैसे आपने देखा कि किसी को अगर बहुत ठंड लग रही है, उसे किसी हीट के पास या आग के या हीटर के पास बैठा दिया जाए तो उसकी जो ठंड है वो कम होती है, और उसमें थोड़ा सा जो अगर उसकी एनर्जी डाउन हो रही होती है तो वो एनर्जी उसको आने लगती है। इट मीन्स दो जो हीट है वो वहां पे हीट एनर्जी एक तरह से काम कर रही है। तो इसी तरह से आपके पास हीट एनर्जी है, अब देखो आप लाइट एनर्जी है, लाइट एनर्जी में आपको बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है, दैट इज अ सन। जैसे ही सन सेट होता है क्या हो जाएगा, अंधेरा हो जाता है, सारी तरफ अंधेरा हो गया। तो वो लाइट अपने आप में कितनी बड़ी एनर्जी है कि हमें सब कुछ दिखाई दे रहा है।
एग्जैक्टली
ठीक है, हम उसके इसमें देख सकते हैं, जैसे ही लाइट आएगी आपका टेम्परेचर बढ़ जाता है। आप देखिए दिन का टेम्परेचर और रात के टेम्परेचर में फर्क होता है,
जी।
तो इट मीन्स कि लाइट जो आ रही है, जो लाइट के साथ साथ हीट भी है, ठीक है, तो लाइट भी अपने आप में एक टेम्परेचर को रेज करती है। अगर वो हीटिंग पॉइंट नहीं है उसके बावजूद भी, आप देखें जिस रूम में आपका अगर बल्ब जल रहा है या जिस रूम में आपके कोई लाइट जल रही है उस रूम के टेम्परेचर में और जिस रूम में लाइट नहीं जल रही है उसके टेम्परेचर में भी हल्का फुल्का फर्क होता है। तो आपका सन एनर्जी एज ए लाइट एनर्जी हो गया। इसके बाद मैकेनिकल एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी जो हम लोग मशीन्स में यूज़ करते हैं, मशीन्स में आप देखो किसी तरह का कोई भोजन तो दे नहीं रहे हैं उनको, मतलब मैकेनिकल एनर्जी है, वहां पे आप एक एनर्जी को किसी दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं अपना कार्य करवाने के लिए। जैसे कि हम लोग बात करें कि हमने पानी को या आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी जब हम कन्वर्ट करते हैं तो पानी के द्वारा हम लोग उनको डिफरेंट मशीनों से गुजारते हुए आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर लेते हैं, तो वो आपकी मैकेनिकल एनर्जी होगी कि आपने उसे कैसे कन्वर्ट कर दिया। आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी है, जैसे कि हमने चाहे आप उसे कोल से बनाइए चाहे आप उसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक से बनाइए, मगर जो आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी है, आप देखिए बिजली के साथ हम लोग कितने काम कर सकते हैं। आप अपने घर में एग्जाम्पल लीजिए, आपकी मशीन वॉशिंग मशीन हो गई, आपका गीजर हो गया, आपका किचन टीवी फ्रिज हर एक चीज इलेक्ट्रिसिटी से चल रही है, और वो इलेक्ट्रिसिटी जो है दैट इज एनर्जी, वो एक फॉर्म है और उस फॉर्म को हम यूज कर रहे हैं अपने किसी कार्य के लिए कि हमारा जो एक फ्रिज क्या है वो सब चीज़ों को ठंडा ही रख रहा है, उसका एक पर्टिकुलर टेम्परेचर मेंटेन करके रख रहा है। गीजर क्या कर रहा है, वो पानी को उस टेम्परेचर तक लेके आ रहा है जहाँ तक हमें कंफर्टेबल हो जाए, हमें ठंडा ना फील हो। तो हर एक जो है, पंखा आपका चल रहा है कि आपको गर्मी ना फील हो, तो हर एक का अपना अपना वर्क है, मगर उस वर्क को कम्प्लीट करने के लिए जो एनर्जी आपका है वो दैट इज़ इलेक्ट्रिक एनर्जी। इसके अलावा आपकी केमिकल्स एनर्जीज हैं, जो हमारे पास केमिकल्स होते हैं या हमारे जो भी केमिस्ट्री में डिफरेंट आपके एटम्स, उन चीजों को यूज करना, ठीक है, किसी अपने पर्टिकुलर पर्पस के लिए, किसी अपने पर्टिकुलर काम के लिए, आप किस एनर्जी को, एनर्जी की किस फॉर्म को यूज कर रहे हैं और किस कार्य के लिए यूज कर रहे हैं, ये सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी कर जाएगा कि आपको किस तरह का कार्य आपको करवाना है, तो उसके हिसाब से हम लोग उस चीज का यूज करेंगे कन्वर्ट करते हुए। कई बार तो हम लोग डायरेक्ट यूज कर लेंगे, कई बार हम उसका कन्वर्जन भी कर सकते हैं। आपकी साउंड एनर्जी है, ठीक है, जैसे साउंड एनर्जी है, उस साउंड एनर्जी में कई बार कन्फ्यूजन हो सकता है कि व्हाट इट इज गोइंग, बट मुझे आपको मैसेज कन्वे करना है, तो हाउ आई एम, मैं कैसे कर रही हूँ, आप मैं बोल रही हूँ, जो साउंड हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो फिनोमेना उसके पीछे पूरा है, वो उसके हिसाब उसी के बेस पे आप मुझे सुन पा रहे हैं, ठीक है, जो हम लोग पूरा इस चीज़ को, जो भी सिस्टम है उस पूरे सिस्टम को इस्तेमाल करते हुए हम अपनी साउंड को स्रोतों तक पहुंचा पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से सबकी एनर्जी यूज़ हो रही है। बींग ए ह्यूमन मेरी अपनी एनर्जी यूज़ हो रही है बोलने में, बींग ए माइक इसकी एनर्जी यूज़ हो रही है, ये मेरी आवाज़ को लेके आगे श्रोताओं तक पहुंच रहा है, बाकी आपका मैकेनिकल पूरा सोर्स है कि आप मैकेनिकली उसे किस तरह से कन्वर्ट करके कहाँ तक, किस रेंज तक पहुंचा पा रहे हैं। तो दीज आर द मेन फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी एंड साउंड एनर्जी। ये चीज़ आप पर्टिकुलर मतलब जनरलाइज नहीं कर सकते, मगर कैपेसिटी, हर एक चीज की एक कैपेसिटी है, तो उस एनर्जी की कितनी कैपेसिटी है कार्य करने की। जैसे हम अगर मशीन को छोड़ दें, मैं अपने बींग ए ह्यूमन हम बात करें, तो मेरे कार्य करने की क्षमता जितनी है, अगर मैं उस कार्य करने की क्षमता से ज्यादा अगर काम करूंगी तो थकावट होगी, ठीक है, और उसी तरह से कहीं ना कहीं फैटिग फील होगा, तो मेरे आगे कार्य करने की क्षमता पे उसका असर
होगा।
वहीं हम मशीनों की बात करते हैं कि अगर आप किसी भी चीज का जो एक उसका लेवल है, उसकी जो क्षमता है उससे ज़्यादा जब उससे कुछ काम करवाते हैं तो वहाँ पे उसकी कमियाँ आ जाती हैं, उसमें क्वालिटी डाउन आ जाता है, क्वालिटी फॉल आएगा। बाकी चीज़ें धीरे धीरे तो देखो डैमेज होती ही हैं, एनर्जी भी आपकी धीरे धीरे, जैसे उसकी भी एनर्जी है तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उसको ख़त्म हो जाएगी, मगर आपके जो कार्य करने की क्षमता है उसके ज़्यादा जब हम करते हैं तो जो उसके क्वालिटी ऑफ वर्क है वो आपका इम्पैक्ट होगा। तो वहाँ पे ज़रूरी है कि जिस चीज़ की जितने कार्य करने की क्षमता है हम उसे उसी उतना ही यूज़ करें। जब हम बात कर रहे हैं कि एनर्जी हमारे लिए इतनी महत्वपूर्ण है और
जी
हमारा जीवन नहीं चल सकता, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि एनर्जी के स्रोत क्या क्या हैं। जब हम बात स्रोतों की कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग सिंपल टर्म्स में ये कह सकते हैं कि वो हर एक चीज़ जिससे हम एनर्जी ले सकते हैं, दैट इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी।
ओके
ठीक है, जैसे हमारे लिए भोजन ऊर्जा का स्रोत है, ऑक्सीजन ऊर्जा का स्रोत है, आपका पानी ऊर्जा का स्रोत है, ये ह्यूमन बॉडी के लिए एक तरह से ऊर्जा का स्रोत हो गया। कार के लिए डीजल या पेट्रोल या सीएनजी, ये ऊर्जा के स्रोत हैं। मशीन चलेंगी उनके लिए आपका इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है। आपके पास हम लोग ये जो जैसे आप मोबाइल है उसके लिए बैटरी हो सकती है ऊर्जा का स्रोत, और अलग अलग है ऊर्जा के स्रोत। मगर ऊर्जा के स्रोतों की जब हम बात करते हैं तो ऊर्जा के स्रोतों में जो यहाँ पे हम फोकस करना चाहते हैं वो ये है कि कुछ स्रोत आप ऐसे देखेंगे कि जो आपने अभी यूज़ किया मगर थोड़ी देर के बाद आप फिर से रीयूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मगर कुछ स्रोत ऐसे होते हैं कि आपने आज अभी यूज़ किया और वो यूज़ हो गया, वो ख़त्म हो गया, फिनिश हो गया। ठीक है, जैसे कि आपने गाड़ी में पेट्रोल डलवाया, आपने अपना टैंक फुल किया, आप उसके साथ 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर आपने जितनी भी यात्रा करी करी, आपका जो सोर्स था वो था पेट्रोल। ठीक है, उसने जो एनर्जी अपन बनाई, जो भी आपका डिवाइस था, डिवाइस के थ्रू जो भी चेंजेस करके जो एनर्जी बनी और जो कार्य हुआ कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव करी वो गाड़ी, और उससे क्या हुआ कि उसके बाद वो ख़त्म, आपका वो पेट्रोल ख़त्म हो गया
जी।
अब वो सोर्स जो है आपको आपका फिनिश हो गया, अब आपको फिर से पेट्रोल चाहिए। तो इसी तरह से जैसे कि आपने कुछ चीज़ कंज्यूम करी है तो वो आपने एक बार कंज्यूम कर ली, अब वो फिनिश हो गई है। मगर अगर मैं बात करती हूँ कि हमने फ्रूट खाया, कोई भी एक्स वाई जेड हमने कोई फ्रूट खाया, हमने खाया वो वाला फ्रूट ख़त्म हो गया, मगर उसका प्रोडक्शन वो ख़त्म नहीं है, वो अभी प्रोडक्ट हो, उसका प्रोडक्शन हो रहा है, फिर प्रोडक्शन हो रहा है। जैसे सीजनल्स हैं, मान लो आप केला है तो एक पर्टिकुलर सीजन में आता होगा, आम एक पर्टिकुलर सीजन में अगर आ रहा है, मगर उसका प्रोडक्शन चलता रह रहा है, वो कंटिन्यू है, वो ऐसा नहीं है कि आज ख़त्म हो जाएगा कल ख़त्म हो जाएगा। तो वो चीज़ें जो ख़त्म हो जाती हैं वो एक तरह का ऊर्जा का स्रोत है, और दूसरा जो चीज़ें नहीं ख़त्म होती हैं वो आपका दूसरा ऊर्जा का स्रोत है। या हम ये ऐसा कर सकते हैं कि कुछ चीज़ों का हम लोग रिसाइकल भी कर पाते हैं। तो आपका हो गया कि जो चीज़ें रिसाइकल हो सकती हैं और जो चीज़ें रिसाइकल नहीं हो सकती हैं, तो ये भी आ जाएगा। तो सबसे पहले तो वो चीज़ें हैं जो आपकी नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज हैं, जो आपके अनवीकरण है, उनका नवीकरण हो ही नहीं सकता। वो आज कल परसों कुछ सालों के बाद कुछ दशक के बाद वो फिनिश हो जाएंगे,
खत्म होना ही है।
हाँ जी
जी,
तो उस तरह से आप उनको स्रोतों को डिवाइड कर सकते हैं दो चीजों में, कि दो भागों में हम रख सकते हैं या दो ग्रुप्स में हम उनको रख सकते हैं, कि एक आपका नॉन रिन्यूएबल में और एक रिन्यूएबल में। तो जब हम नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज की बात करते हैं तो आप खुद भी समझ सकते हैं, और जहाँ तक मुझे आइडिया है कि हमारे श्रोतागण भी अपना समझ सकते हैं, कि ऐसे सोर्सेज जो आपके आज कल में या कभी भी ख़त्म हो जाएंगे एज पर द डेफिनेशंस। इसमें जब हम बात कर रहे हैं तो आपके आ जाएंगे जैसे कि कोयल, आपका कोयल है, आपका गैसेस हैं, जैसे कि आपकी गैसेस हैं तो ये अभी जो हमें लगता है कि एटमॉस्फेयर में हैं, मगर जिस तरह से पॉल्यूशन या पॉपुलेशन बढ़ रही है, या अब हमारा द सिस्टम चेंज हो रहा है, द लिविंग स्टाइल वी आर गेटिंग नाउ इन दिस डेज, तो ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। तो गैसी जो रिजर्व्स हैं आपकी, वो मे बी कि अगले 30-35 सालों में ख़त्म हो जाए, जो आपके कोल है, कोयला भी आपने देखा होगा कि हम लोग उसे एज ए एनर्जी स्रोत
जी
यूज़ करते हैं। जैसे कि पहले तो चलो ये आपकी ट्रेन वगैरह भी चलती थी, मगर अब क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी ने उसे रिप्लेस
रिप्लेस
कर
कर दिया।
कराया है, मगर फिर भी आपने देखा होगा कि अभी आयरन जो हम लोग करते हैं कोयल से करते हैं, बाकी भी और भी कई जगह
कई
यूज़ होता है,
चीज़ें इस्तेमाल।
इवन कि हम लोग कोल से अपना इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करते हैं, तो वहाँ पे भी प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो ये भी आपका अगले 100 सालों में ये भी ख़त्म होने के कगार में है। सिमिलरली आपके जो भी अलग अलग हैं चीज़ें, तो वो आपके नॉन रिन्यूएबल में आ जाएंगी। इसमें अगर हम लोग बात करते हैं तो इसको बोलते हैं पर्टिकुलर फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स सच एज कोयल, ऑयल एंड सॉरी कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैसेस आर द नॉन रिन्यूएबल गैसेस या सोर्सेज ऑफ द एनर्जीज। ये आपके वो स्रोत हैं जो या तो खत्म हो जाएंगे या उन्हें हम द्वारा से रिन्यू रिजनरेट नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले इसमें से हमने बात करी है तो कोल की है। कोल की बहुत तरह तरह की वैरायटी होती हैं, ये हमें बहुत डाउन अर्थ में मिलता है, इसका अपना प्रोसेस है बनने का, वी आर नॉट गोइंग फॉर दैट कि कोल कैसे बनता है और कहाँ होता है, किस तरह से होता है, बट ये बहुत गहरे में होता है। इसकी अलग अलग क्वालिटीज़ होती हैं किस किस तरह से हैं। जो कोल हम यूज़ करते हैं दैट इज़ अ बेस्ट पार्ट एंड दैट इज़ अ सोर्स ऑफ द एनर्जी। उसमें से हमें हीट एनर्जी भी मिलती है, लाइट एनर्जी भी मिलती है, और आप मशीन्स को भी उसके साथ यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा आपके पास आ जाती हैं गैसेस हो गई हैं आपकी अलग तरह से, नेचुरल गैसेस जो हैं। नेचुरल गैसेस की अगर हम बात करते हैं तो आप एक जो अंटार्कटिका है आपका, उस पर्टिकुलर पार्ट को छोड़ दिया जाए तो ऑलमोस्ट पूरे प्लानट पे हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस हैं। ये डिपेंड करता है कि किस एरिया पे कौन सी गैस ज़्यादा है। जैसे कि हम अब बात करते हैं तो अभी दिल्ली का हमारा ये जो है आपकी हवा पा है कह सकते हैं, या जो आपका ब्रीदिंग एटमोसफेयर है दैट इज़ नॉट हेल्दी। वो आजकल कहते हैं कि सही नहीं है, क्यों? क्योंकि जो एक कम्बिनेशन ऑफ द गैसेस होना चाहिए एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में, हेल्दी इन्वायरमेंट में, वो यहाँ पे डिस्टर्ब हो गया।
जी
किस वजह से डिस्टर्ब हो गया? देर आर नंबर ऑफ रीजंस।
रीजंस
तो वहाँ पे आपका जो भी है कि आपकी किसी पर्टिकुलर गैस की मात्रा ज़्यादा हो गई है, जो हमें गैस जो जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए सही है वो उसकी वहाँ पे मात्रा कम हो गई, तो वहाँ पे वो जो आपका गैसेस का कम्बिनेशन बिगड़ना या बनना या अलग अलग जगहों पे अलग अलग होना वो अलग इशू है। मगर गैसेस हर जगह है, मगर उनका अगर हम लोगों ने प्रॉपरली यूज़ नहीं किया तो विद द पैसेज ऑफ टाइम ये चीज़ें भी ख़त्म हो जाएंगी, जिन्हें रीजनरेट करना रीन्यू करना हमारे लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा। यहाँ पे क्योंकि आप जैसे हम चर्चा कर रहे हैं कि जो आपका नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हैं उसमें यही प्रॉब्लम है कि वो आज नहीं तो कल परसों कुछ टाइम के बाद ख़त्म हो जाएंगे। और हमने सबसे पहले बात करी थी कि एनर्जी के बिना हम रह नहीं सकते,
जी
तो अगर एक चीज़ जो हमें एनर्जी दे रही है किसी भी तरह से हमारे लाइफ सिस्टम को या हमारे जो लाइफस्टाइल है, अगर वो ख़त्म हो जाता है तो उस केस में हम कैसे सर्वाइव करेंगे? इट्स ए
बिल्कुल
बिग क्वेश्चन।
हाँ
तो उस केस में सबसे बड़ा जो हमारे पास सोल्यूशन है वो एक ही है कि हम लोग शिफ्ट हो जाएं, हम लोग शिफ्ट करें रीन्यूएबल सोर्सेज की तरफ,
ओके
ऐसे सोर्सेज जो रीन्यू हो सकते हैं, ऐसे सोर्सेज जिनको हम रीयूज कर सकते हैं, बार बार यूज कर सकते
जिनके
हैं,
खत्म होने का
जिनके
डर
खत्म
नहीं है
होने का
हमें।
डर
जी
नहीं है, जिनके खत्म होने के चांसेस नहीं है। तो जहाँ पे हम इनकी बात कर रहे हैं तो यहाँ पे प्रश्न आता है कि ऐसे कौन से सोर्सेज हैं कि जो खत्म नहीं होंगे। तो हालांकि कहने को तो ये आता है कि कई करोड़ों वर्षों में सूरज भी खत्म हो जाएगा,
जी
मगर अभी तक अगर हम मान के चले तो जितनी जल्दी हमारे नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज खत्म होंगे उसी हिसाब से हमारे अभी सूरज के खत्म होने के चांसेस
चांसेस
नहीं।
नहीं है।
तो हम सूरज को, पानी को और हवा को, हवा आप देख सकते हैं, पानी आप देख सकते हैं और सूरज, आप तीन चीज़ें ये हमारी ऐसी हैं जो आपकी रिन्यूअल है। रोज़ सूरज निकलेगा, रोज़ सूरज अस्त होता है, उसके ख़त्म होने का तो कोई सवाल ही नहीं है। पानी में इतनी ऊर्जा है कि आप देखेंगे कि जब भी बाढ़ आती है पानी में, आपने देखा होगा, तो कितने मतलब आसपास का कितना एरिया अपने साथ लेके चली जाती है, वो पानी ले जाता है अपने साथ, बड़ी बड़ी बसेस, कितना मतलब कई कितना नुकसान ही एक तरह से हम कह सकते हैं। मगर मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ कि अगर आपको एग्जाम्पल फील करना है कि एनर्जी कितनी एनर्जी है पानी में, तो आप एक बाढ़ वाला सीन देखिए कि उस बाढ़ में कितना कुछ बह जाता है, तो उसकी कितनी एनर्जी है। सिमिलरली आप तूफान देख लीजिए हवा का,
जी
तो उसमें आपके कितने बड़े बड़े पेड़ उखड़ जाते हैं, तो वहां पे भी आपका इसका मतलब कि उसमें भी खूब एनर्जी है। तो उस एनर्जी को ही हमने यूटिलाइज करना है, उसी का हम जितना अच्छे से यूज कर पाएंगे करेंगे। तो देखिएगा आपने जैसे सोलर की बात हम बात करते हैं, सूरज की बात करते हैं, तो सूरज को यूज करने का सबसे पहला तरीका है कि जब दिन में हम हैं तो हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज ना करें। हमारे पास सूरज की पूरी धूप है, पूरी लाइट है, तो उस लाइट का यूज़ किया जाए। अभी लोगों का माहौल क्या हो गया कि कर्टन्स लगा दिए घर में और लाइट जला के बैठ गए। बेटर है कि आप कर्टन्स हटाइए,
और
एक तो वो
सनलाइट आने दें।
सनलाइट आएगी, तो सनलाइट आने से दैट इज़ अ हेल्दी वन, ऊपर से लाइट में आप काम करेंगे तो आप अपना कंट्री के लिए, अपने लिए और अपने भविष्य के लिए, सबके
बिजली
लिए कुछ
बचा रहे
पर्टिकुलर कोई ना कोई योगदान दे रहे हैं।
जी।
इसी तरह से आपने सोलर सिस्टम्स देखे होंगे, अब सोलर सिस्टम्स हैं तो आप देखिए आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं सोलर सिस्टम से, आप वो अपना पानी वाटर जो गीजर है आपके वो आप यूज बना सकते हैं, सॉरी उससे गर्म पानी हो सकता है। तो सोलर एनर्जी का इवन कि इलेक्ट्रिस इसमें सॉरी आपका एग्रीकल्चर में यूज़ होने लग गया है कि वहाँ पे भी किसी तरह से आपको कोई अगर छोटा मोटा कुछ खेत में कुछ काम करना है, कोई एनर्जी कन्वर्ट करनी है, तो वो जो एनर्जी सूरज की है वो जो एनर्जी है वो उस एनर्जी को वहाँ पे वो कन्वर्ट कर दे रही है, तो वो कन्वर्जन भी कर देगा किसी ना किसी तरह से। तो वहाँ पे हम सोलर एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह से पानी को हम यूज़ करते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो हमारे होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा आपका यूज़ देखिए इसमें पानी का ही है, पानी के द्वारा। और आप देखिए कि जब हम डैम बना रहे हैं, डैम बना के हमने देखो पानी स्टोर किया, उसको जब हम प्रेशर से छोड़ रहे हैं तो एक तो हम एनर्जी जनरेट कर रहे हैं जहाँ भी प्रेशर से छोड़ रहे हैं, और जो प्रेशर से छोड़ के बाद जो हमने निकला पानी, उस पानी का तो कुछ चेंज नहीं हुआ, वो पानी तो एज इट इज ही है। उस पानी को भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, तो हमने नहरें बना ली, उस पानी को एक ऐसी जगह पहुंचा दिया, ऐसी जगह डाइवर्ट कर दिया जहां एग्रीकल्चर के लिए उसकी ज़रूरत थी। तो आपने मल्टीपल पर्पस हो गया आपका, उसका मल्टीपल यूज़ हो गया, आप उससे सिंचाई भी कर रहे हैं, आप उससे इलेक्ट्रिसिटी भी यूज़ कर रहे हैं।
जी
इसी तरह से आपका हवा का है, विंड मिल हो गया आपका, कि आप जो हम इलेक्ट्रिसिटी पानी से यूज़ कर बनाने की बात कर रहे हैं वो हम हवा से भी बना सकते हैं। जैसे आपका टर्बोनेट आपका जितना तेज़ी से मूव करेगा, जितना जल्दी मूव करेगा, उसी हिसाब से हम इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। तो जो इलेक्ट्रिसिटी हम कोल से बना रहे थे, कोयले से कर रहे थे,
जी
क्योंकि कोयला तो आपका ख़त्म होने
हाँ
वाला है,
हाँ
तो उसको हमने अब नया सोल्यूशन दे दिया कि हम पानी से बना लेते हैं या फिर हम
बिच
उसे
हवा
विंड
से
से बना लेते हैं, तो वहाँ पे वो चीज़ अपने आप में कंट्रोल हो जाएगी। तो आई थिंक कि जितना हम इन नेचुरल रिसोर्सेज का जो नेचर में नेचुरल रिसोर्सेज जो नहीं ख़त्म होने वाले हैं उनका जितना हम यूज़ करेंगे उतना ही वहाँ पे हमारे के लिए बेनिफिट होगा, और जो नॉन रिन्यूएबल हैं उनकी उम्र बढ़ जाएगी एटलीस्ट, कि वो थोड़ा और साल आगे निकल जाएंगे और
हाँ
आगे तक हमें अपना उनको हम यूज़ कर पाएंगे आगे और हमारी जनरेशन।